श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा 13वां अध्याय शीर्षक धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक क्रमांक 3, 4, 5, 6 और 7। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर् ज्ञातयः ससुतास्त्रियः। अनुवाद। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो सारे निवासी महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई युत्सु, धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों सहित स्त्रियां सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंग विवादनैः। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और आलिंगन सहित एक दूसरे का स्वागत किया। मुमुचुहु प्रेम बाष्पौघम विरहौत कंठ कातराहा राजा तमहर्षया चक्रे कृतासन परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर चिल्ला पड़े। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम भी कर चुके थे तो उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया कि वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनते रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का आलिंगन तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। जब राजा ने परिवार तथा अन्य विषयों की बातें तब राजा ने परिवार तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर में कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का क्या कहना, जो परिवार भर के सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। कल हमने देखा किस प्रकार महात्मा विदुर करीब 30 साल के भ्रमण के बाद सारे पवित्र तीर्थों में भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर वापस पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि से पहले वो निकल पड़े, जब दुर्योधन ने बहुत ही बुरी तरह से उनका अपमान किया तो वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति से महल से बाहर निकले और वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। एक्चुअली उन्होंने उसी समय हस्तिनापुर और अपने महल को त्याग दिया। एक रूप से संन्यास ले लिया समझ लीजिए, और भ्रमण करते रहे कुरुक्षेत्र की रण हो गई, महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित भी बड़ा हो गया, नवयुवक बन गया। पांडवों को ऐसा लग रहा था कि शायद विदुर अभी फिर कभी नहीं आएंगे, शायद जीवित है या नहीं वो भी नहीं मालूम था उनको। उनको यह था कि बस शायद चले गए, बस अब नहीं आने वाले, फिर से वापस नहीं आने वाले। पर बहुत प्रेम करते थे विदुर से, क्योंकि विदुर, महात्मा विदुर, हालांकि सबके प्रति समान थे, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते थे, पर यह साफ साफ जाहिर था कि वो पांडवों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को वो बहुत ही ठीक ठाक समझाते थे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत बात है। दुर्योधन को डांटते थे क्योंकि वो जो कर रहा था वो सही नहीं था। उस समय वो सब छोटे बच्चे थे जब महाराज पांडव गुजर गए और कब पांडव और कौरव धृतराष्ट्र के नेतृत्व में रह रहे थे उस महल में, और पांडवों की रक्षा करते थे क्योंकि वो पूर्ण रूप से निस्सहाय थे उस समय, कुंती महारानी और पांडव। तो हालांकि वो सबके प्रति वो समान थे, पर फिर भी जैसे जैसे उनका व्यवहार था वैसे उनका आदान प्रदान था, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता था कि वो पांडवों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, पर प्रेम सबसे करते थे। प्रेम के कारण धृतराष्ट्र को वो कठोर शब्द में कुछ मार्गदर्शन देते थे जो धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो दुर्योधन और कौरवों के विरुद्ध था। दुर्योधन को कभी अच्छा नहीं लगता था जो डांटते थे उन्हें, क्योंकि वो उसका व्यवहार ही ऐसा था, और पांडवों का संरक्षण करते थे क्योंकि वो निस्सहाय थे और धर्म के पथ पर चल रहे थे। तो विदुर सबको प्रिय थे, वो शायद एक दुर्योधन के अलावा सबको प्रिय थे, सबके शुभ चिंतक थे, और वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि शुरू होने से पहले ही बहुत ही गलत तरीके से कटु शब्दों में अपमान करने के कारण निकल पड़े थे, फिर से न आने का निश्चय कर लिया था उन्होंने। पर तीर्थ यात्रा करते करते उन्होंने यह भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो गया, वो भगवत धाम चले गए, लीला समाप्त कर दिए धरातल पर, और उद्धव से मिले, उद्धव से भगवान के बारे में प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि भगवान ने उद्धव से कुछ बातें की थी, और अभी वो जब भगवान उद्धव को प्रशिक्षण कर रहे थे तब मैत्रेय मुनि भी वहां थे, तो उद्धव ने मैत्रेय मुनि की ओर उनको मार्गदर्शन दिया। एक वैष्णव एटिकेट है ये, वैष्णव आचार ये है कि हमसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो उसके सामने किसी को एक शिक्षण देना ये अनुचित है। तो क्योंकि मैत्रेय मुनि उम्र में बड़े थे और वो भी कृष्ण के जो इंस्ट्रक्शंस शिक्षा सुने थे, तो उद्धव ने, और भगवान के विरह में वो बहुत ही, भगवान का स्मरण करते तो वो बहुत ही मानसिक रूप से विचलित हो जाते और अलग अलग प्रकार के प्रेम का विकार उनमें उत्पन्न हो जाता, तो इसीलिए उन्होंने मैत्रेय मुनि से श्रवण करने को कहा। और मैत्रेय मुनि से श्रवण करने के बाद पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जानने के बाद, और जैसे कल हमने चर्चा की जातैक भक्तिर गोविंदे, निष्कर्ष निकालने के बाद कि गोविंद की भक्ति के अलावा और कुछ इस वेदों का उद्देश्य और कुछ नहीं है, ये जानने के बाद हस्तिनापुर आए। अभी एक व्यक्ति जो वहां से निकल चुका है फिर से क्यों आए, उनका महल में रहने का आसक्ति नहीं था और किसी की चीज की इच्छा भी नहीं थी वहां आने पर, सिर्फ एक उद्देश्य से आए और वो था कि अपने बड़े भाई जिनको बहुत प्रेम करते थे धृतराष्ट्र, जो दुर्भाग्यवश पहले पुत्र मोह और अभी भी वो मोहग्रस्त होकर उसी महल में रहते थे जिस महल में उन्होंने पांडवों को अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास किया था, अभी उन्हीं के साथ रह रहे थे उनको, और मृत्यु के पास पहुंच गए थे, 80% जीवन उनका जीवित हो गया था और जो थोड़ा बच्चा था बाकी, बोले उनको उस वहां से निकालकर किसी ना किसी तरह से आत्म साक्षात्कार के पथ पर लगाने के लिए आए, और किसी को नहीं मालूम ये उनका उद्देश्य ये था। और जब महात्मा विदुर आए और यहां महाराज युधिष्ठिर, सारे पांडव, कुंती देवी और जितने सारे एक्चुअली गांधारी धृतराष्ट्र जितने लोग थे यहां, सबके सब विदुर को अपने शुभ चिंतक और गुरु ही मानते थे, और प्रैक्टिकली उनका मत यह था कि वो अभी नहीं रहे और एकाएक आ गए तो इतना हर्षित हो उठे, यहां वर्णन किया गया है कि हर एक व्यक्ति उस महल में जो भी था, सारी स्त्रियां थी जिनके पति मारे गए थे, पांडव थे, कुंती थी, सुभद्रा, द्रौपदी, गांधारी और कितनी बहुत सारी स्त्रियां, उनके बच्चे, सब एकदम हर्षित हो गए। और उदाहरण दिया गया कि किस जिस प्रकार एक प्राण रहित व्यक्ति में फिर से प्राण का संचार हो गया हो, कोई बेहोश हो जाता है तो देखते हैं कि हाथ पैर एकदम बस मरे हुए जैसा लगता है और उसमें फिर से होश आ जाए, चेतना आ जाए उसके अंदर, तो जिस प्रकार वो उठता है और हरेक जो अंग है अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, इसी तरह से हरेक व्यक्ति ऐसे थे मानो वो मुर्दे थे एकदम। पर जैसे विदुर का नाम सुने कि वो पधारे हैं यहां, तो इतने हर्षित हो गए मानो उनके अंदर प्राण का फिर से संचारित हो गया। और इस श्लोक में, इसके पिछले श्लोक में और इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वर्णन है। प्रभुपाद जी जब भी तात्पर्य लिखते हैं तो तात्पर्य के साथ साथ तात्पर्य में एक कल्चरल बैकग्राउंड, वैदिक संस्कृति कैसे थी, इसका भी जहां भी मौका मिलता है वहां वो सूचित करते हैं, उसको विस्तृत करके समझाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ही इज कॉल्ड द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक राजदूत, वैदिक संस्कृति के राजदूत थे वो। न केवल भक्ति, न केवल कृष्ण के प्रतिनिधि थे, बल्कि वैदिक संस्कृति के राजदूत थे वो। प्रभुपाद जी से पहले कई गुरु, कई साधु, कई स्वामी, कई महात्मा, भले वो असली में महात्मा हो या ना हो, तथाकथित महा, कई लोग पाश्चात्य देश में भी गए और वैदिक संस्कृति को या वैदिक पुस्तकों को, वैदिक साहित्य को प्रस्तुत किया। और पाश्चात्य देश के लोगों ने उसे सम्मति दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है, फिलॉसफी बहुत अच्छा, सिद्धांत, और वो भी सिद्धांत ज्यादातर निर्विशेषवादी था। पर जब प्रभुपाद जी गए, न केवल उन्होंने वैदिक शास्त्र का सिद्धांत, शुद्ध भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति स्थापित की, पर एक संस्कृति का भी बीज बो दिया। आज हम देखते हैं पूरे विश्व भर में, जहां भी जाइए इस्कॉन में, न केवल वो भगवान की शुद्ध भक्ति नवदा भक्ति के द्वारा कर रहे हैं, बल्कि श्री विग्रह की आराधना, यहां तक कि उनका खान पान शुद्ध शाकाहारी, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद, उनके वस्त्र भी धोती कुर्ता तिलक, और उनके रहन सहन भी प्रणाम करना एक दूसरे को, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा, हर एक चीज, मतलब वैदिक संस्कृति जो है, कल्चर, उसको भी उन्होंने प्रदान किया। क्यों ये बड़ा महत्वपूर्ण है? और न केवल उन्होंने पुस्तकों में लिखा, भागवत के द्वारा वो संस्कृति दी, पर साथ साथ अपने वैयक्तिक जीवन से भी उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया, सिखाया। एक भक्त आए हुए थे उनका बहुत अच्छा से उन्होंने वर्णन किया कि शुद्ध भक्ति दे दो भाई, अभी संस्कृति का क्या जरूरी है? Why is the cultural presentation necessary? उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया। सामने ग्लास रखा हुआ था पानी पीने के लिए, जैसे व्यासासन के बगल में हमेशा रखते हैं, रखना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, बोलते बोलते किसी को थोड़ा, भले एकादशी हो द्वादशी हो, पर पानी रखना जरूरी है, क्योंकि ये सेवा है, और सेवा करते करते कुछ बेचारे को, बोलने वाले को कुछ तकलीफ हो गया, तो कम से कम पानी पी के शुरू करे, हमेशा रखना चाहिए पानी व्यासासन के पास। अच्छा तो तुरंत वो ग्लास लिए और बोलने लगे, देखो भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो एक्चुअली वैदिक संस्कृति का सार है, वो पानी के बराबर है, क्योंकि प्यास है लोगों को, जब तक पानी नहीं पिएंगे प्यास नहीं बुझेगी, और कुछ भी प्यास बुझा नहीं सकता। तो आत्मा प्यासा है, और आत्मा का प्यास सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति ही मिटा सकती है, वही भागवत है। व्यासदेव सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद भी तृप्त नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। नारद मुनि ने बताया संतुष्टि क्यों नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति दो, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, जल पिया तो प्यास बुझ जाता है। तो इस तरह से आत्मा की प्यास जो है शुद्ध भक्ति के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति, अहैतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धती। तो ठीक है, पानी तो पिला दिया, पर अगर पानी पूरे दुनिया में बांटना है तो एक कंटेनर चाहिए। अगर पानी आप हाथ में ले लोगे कितने देर तक बांटोगे, कितना बांट पाओगे? नीचे गिरता रहेगा, खत्म ही हो जाएगा। तो पानी बांटने के लिए कंटेनर, कंटेनर को क्या कहते हैं हिंदी में? पात्र। हां, एक पात्र चाहिए, योग्य पात्र। न्यूज़पेपर का अगर एक पात्र बनाया और उसमें पानी डाल दिया तो टिकेगा नहीं। तो भक्ति को अगर पूरे समाज में, देश भर में, पूरे विश्व में अगर ले जाके बांटना है, एक तो पात्र हमारे हृदय में होनी चाहिए। जब तक हमारे हृदय में वो नहीं है तो बांटेंगे क्या? आपोनी आचार्य प्रभु जीवे रसिखाए। तो अपना आचार से, अपना व्यवहार से, अपना रहन, अपनी भक्ति से, भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए, नहीं तो क्या बांटेंगे। पर दूसरी बात है, अगर बड़े पैमाने पे बांटना है तो एक योग्य पात्र होनी चाहिए, और वो पात्र जो है वो वैदिक संस्कृति है। क्योंकि वैदिक संस्कृति में आत्मा को जोर दिया जाता है, शरीर को नहीं। आज की जो संस्कृति है, आज कोई संस्कृति है ही नहीं एक्चुअली, तथाकथित भौतिक संसार की जो संस्कृति है, जैसे महात्मा गांधी को पूछा गया एक बार कि पाश्चात्य संस्कृति के बारे में आपका क्या विचार है, तो बोले वेस्टर्न कल्चर इज गुड आइडिया, मतलब कल्चर है ही नहीं उधर। तो वो जो वैदिक संस्कृति है, उस संस्कृति में आत्मा, भगवान और भक्ति को केंद्र में रखा जाता है। जो कुछ भी कार्य होता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये आहार निद्रा भय मैथुन तो हो नहीं है, क्योंकि शरीर की जरूरत है ये सब। पर ये शरीर की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आहार, कैसा आहार होना चाहिए? आहार ऐसा होना चाहिए जो आत्मा, आत्म साक्षात्कार में मदद करे, भक्ति में मदद करे, भगवत भाव, भगवत साक्षात्कार में मदद करे। निद्रा, सबको सोना ही चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, जो मदद करे इन चीजों में। उदाहरण के लिए एक छोटी सी, किसी का जन्मदिन होना, जन्मदिन मनाना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जन्मदिन मनाना क्या, सबको बुलाओ, जिसका जन्मदिन है वो केंद्र है, मैं ये शरीर हूं, आज इसका जन्म हुआ, बहुत बड़ा काम किया तुमने इस भौतिक संसार में जन्म लेके, क्या बड़ा काम किया तुमने, जेल में आया। कोई आदमी जिस दिन जेल में आता है उसका मनाता है क्या, आज मेरा एक साल हो गया जेल में आके, सबको फीस्ट खिलाऊंगा, केक खिलाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है, तुमने जेल में आके कौन सा बड़ा तीर मारा। पर वैदिक संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस का मतलब ऐसा नहीं कि मैं केंद्र हूं, मैं शरीर हूं, बलून लगाया, केक काटा, ठीक है। पर वैदिक संस्कृति के अनुसार उस दिन थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, कम से कम एक दिन, कम से कम जन्मदिन, कि प्रभु बुरी तरह से कैसा जन्म ले लिया, फिर से जन्म नहीं चाहिए मेरे को। और उस दिन ब्राह्मणों को घर बुला के दान देना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अगले दिन सबको खूब खिलाया भगवान, उसकी उसमें वर्णन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फेस्टिवल नंद महाराज ने किया, विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च, भगवान की प्रसन्नता का उस दिन भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और स्वपुत्र से उदयाय च, इस मेरे पुत्र को सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिले, लोगों का आशीर्वाद मिले, संतों का आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, भक्तों का आशीर्वाद मिले, ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिले, ताकि इसका जीवन सफल हो और भगवान प्रसन्न हो। बस ये दो ही उद्देश्य था, विष्णु आराधनार्थाय, भगवान प्रसन्न हो, और स्वपुत्र से उदयाय च, उसको खास कृपा मिले, ज्यादा आशीर्वाद मिले आज के दिन, ताकि वो जीवन की जो परिपूर्णता है उसको प्राप्त करे। कहां ये केंद्र है आज? तो वैदिक संस्कृति श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, और इसीलिए आज हम देखते हैं जो भी इस प्रभुपाद जी के दिए हुए भगवान श्री कृष्ण का संदेश को परंपरागत स्वीकार करते हैं, जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, और जिस हद तक उसको सख्तता से समझकर पालन करते हैं, उनके न केवल उनके वैयक्तिक हृदय में बल्कि उनके जीवन में, उनके परिवार में, वो समाज में धीरे 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 वैदिक संस्कृति अपने आप आ जाती है। सिर्फ समझो और समझ के उसको उतारो, बस अपने आप दूसरा सब हो जाएगा। तो वो संस्कृति है एक ऐसा पात्र जिसके अंदर भक्ति को ज्यादा समय तक अपने जीवन में ही रख सकते हैं और बांट भी सकते हैं। पर अगर पात्र ठीक नहीं हो तो ज्यादा समय तक रहेगा भी नहीं। अगर वैदिक संस्कृति में अगर संस्कृति अनुकूल नहीं हो तो पाश्चात्य देश में प्रचार करने के बावजूद भी लोगों को भक्ति में लगे रहना बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि अनुकूल संस्कृति नहीं है। नदी ऐसा बह रही है और आप उसको उल्टा तैरना है, बहुत मुश्किल है। नदी के विरुद्ध, प्रवाह के विरुद्ध तैर के जाना अकेले को बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि एक ऐसी संस्था हो जहां न केवल भक्ति, भक्ति तो मुख्य चीज है, पर भक्ति वर्धक, भक्ति को बनाए रखने के लिए और भक्ति को प्रगति करने के लिए एक अनुकूल वातावरण हो, एक अनुकूल संस्कृति हो, जहां जो भी चीज हम कर रहे हैं कि मनुष्य सामाजिक जीव है और समाज में रहने के लिए जो अनुकूल है वो करना चाहिए। तो वो सामाजिक जो भी हमारा कोई फेस्टिवल हो, कोई भी चीज हम लोग करते हो, वो वैदिक होना चाहिए, तो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो यहां बताया गया है, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। तो स्वागत करना, कोई भी व्यक्ति आया तो उसको स्वागत करना भी एक विज्ञान है। इट इज ए साइंस, इट्स ए परफेक्ट वैदिक साइंस, कैसा व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। यहां बताया गया है, सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का आलिंगन तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। आए कोई, आए तो हर्षित होना चाहिए सबसे पहले कि आप आए, अरे आप, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। सबसे पहले उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि मैं आया तो ये लोग खुश हैं। फिर से कम आएगा सोचेगा, वो आया तो सबसे पहले 5 मिनट दरवाजा खटखटा रहा, कोई खोला ही नहीं खोला, अरे ऐसा समय में आया तू भी, और सोचता नहीं सुबह सुबह आ गया तू, इतने रात को आया, अतिथि कोई तिथि नहीं है, कभी भी आ जाएगा। आया है तो सबसे पहले हर्षित होना चाहिए, एटलीस्ट आपको लगे या ना लगे, आइए। मुझे मालूम है, मैं जब छोटा था हमारे घर में मेरी मां बहुत बिजी रहती थी, सुबह से काम रहता था, 7 बच्चे सबको संभालना, और दोपहर के समय कम से कम 2 घंटा सोती थी, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता था, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता था। दोपहर का 2 घंटा अगर हम कोई डिस्टर्ब करते तो मुझे हमें मालूम था कि अगर मां को दोपहर को डिस्टर्ब किए तो अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। दोपहर के समय हम कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे मां को। तो उसी समय एक हमारी एक रिश्तेदार थी, और वो किसी के यहां जाती थी नहीं, उसका ये क्लियर था क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि कोई उसको मतलब स्वागत नहीं करते थे, क्योंकि वो अजीब तरह से पड़ मतलब फालतू वही बातें 10 बार करना, 15 बार करना, और ये क्या है, क्या खाए, कुछ खिलाओ मेरे को, कुछ ये लाओ, कुछ ये भी दो, वो भी दो, कुछ तो मतलब मांग के भी ले जाना, कोई मतलब स्वागत जनरली नहीं करता था। पर एक चीज था हमारे माने रखा था, कुछ भी हो, कोई भी आए, अतिथि आए तो उसका मुस्कुराते हुए स्वागत करना, भले वो ठीक है या नहीं वो मत कुछ है, पर यह था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि उस समय पूछती थी कौन आया तो हम लोग गेट में से देख लेते थे, गेट खुला उधर से तो तुरंत हम देखते थे और जाके बोलते थे आ गई हो, क्योंकि मालूम था हमें कि वो मां उठेगी और जाएगी उनको वेलकम करने के, स्वागत करने के, और हमें मालूम था कि अच्छा नहीं लगता था, तो आ गई क्या अच्छे सब इतना हमें मालूम था क्या लग रहा था उनको, पर तुरंत सब ठीक ठाक है तुरंत, और जैसा दरवाजा खोलती थी कुछ अलग ही स्वरूप था उनको, ऐसा अरे आप आए वो अच्छे पता चले आइए बैठिए, और दो घंटा वो बोलती थी अभी दो घंटा गया मेरा ये पर जैसा खोलती उनको लगना, कभी ऐसा उनके लगने नहीं दिया कि वो स्वागत नहीं है कभी, तो मुझे गुस्सा आता था ये दांभिकता है, इट इज हिपोक्रेसी, अरे जो अंदर लगता है थोड़ा बोल दो उसको मैं बोलता था मैं बोलूं क्या हम लोग बोल दे क्या शप चुप निकलो यहां से तुम लोग आइए बैठिए कैसे हैं, रिश्तेदार थे, उम्र में बड़ी थी, स्वभाव उसका ऐसा था, तो मैं मुझे लगता था कि हिपोक्रेसी दांभिकता ही क्यों करना है, जो हृदय में वो है जो अंदर सो बाहर ऑनेस्ट, अरे प्रामाणिक होना चाहिए हमको, दिखावट क्या दिखावट करना, जो है जो है बाहर, कभी कभी लोग बड़े हिस्से से बोलते हैं जो अंदर सो बाहर, मैं कोई छिपाता ही नहीं हूं, जो अंदर सो बाहर अच्छा है, तो जो अंदर सो बाहर अगर हो जाए तो पशु बन जाएंगे हम लोग, जस्ट डू इट, जैसा लगा ऐसा मैं करूंगा, जैसा आज मेरे को गुस्सा आ रहा है काम क्रोध लोभ के वश में, जो अंदर सो बाहर हो गया तो सोचिए क्या होगा, मेरे को लग रहा है किसी के साथ भोग करना है, बस जो अंदर सो बाहर कर लिया ना, मैं वैदिक संस्कृति मतलब नियंत्रण करना अपने इंद्र तृप्ति या अपने जो स्वार्थ से जो प्रवृत्त क्रियाएं हैं विचार हैं या शब्द हैं उनको नियंत्रण करना, यम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति, शास्त्र को स्वीकार करना किस लिए हम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं अगर शत्रु भी आ जाए, जो अच्छा नहीं लगता दूर की बात, शत्रु भी आ जाए तो उसको ऐसा स्वागत करना चाहिए कि उसको लगे कि अरे यहां तो कोई आराम से सोएगा, तुम्हारे घर में आके ऐसा सोएगा, तो शत्रु आपको मार भी सकता है ना, आप अगर कोई एनिमी शत्रु के कैंप में जाके सो सकता है आदमी, सो ही नहीं सकता हो, क्योंकि मालूम है सो गया तो कोई मार ही देगा उसको, पर एक शत्रु को भी ऐसा लगे कि कोई भयभीत नहीं आराम से, एक अतिथि के रूप में जा रहा हूं तो 100% स्वागत करेगा। दुर्योधन रणभूमि के दौरान 10वें दिन 9वें दिन के रात अर्जुन आया, देखिए दुर्योधन जैसा व्यक्ति फिर भी वो कह रहा है अर्जुन को, अर्जुन आ बैठो, पूरे दिन भर उसे मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, पर जो शाम को सूर्यास्त के बाद अभी लड़ाई बंद हो गया, अभी वैदिक संस्कृति चालू, ऑफकोर्स उनका लड़ाई भी वैदिक संस्कृति के अनुसार था, ऐसा नहीं कि घर में यहां से खिड़की से इधर बर्तन फेंका, नहीं बोले लड़ना है ना तो ये सब यहां पब्लिक में नहीं, चलो अलग से जाएंगे, सिर्फ योद्धा लोग वहां जाएंगे, सुबह शंख बजेगा शुरू करेंगे, शंख बजेगा बंद करेंगे, उसके बाद हमारा संबंध रहेगा, परिवार के लोग है ना कौरव पांडव, और अगर तीर नहीं है तो मैं भी तीर नहीं बजाऊंगा, अगर तुम्हारे पास तलवार नहीं तो मैं तलवार से नहीं लड़ूंगा, अरे लड़ाई में भी सांस्कृतिक तरीके से लड़ना, कल्चर्ड वे ऑफ फाइटिंग, देखिए लड़ने में भी देर इज ए वे ऑफ फाइटिंग, लड़ाई के समय तो मार किसी तरह से मारो, बस उसको मरना चाहिए, पर नहीं वो नियम नहीं तोड़
सोच भी नहीं सकते 5000 साल पहले कैसा था, 500 साल पहले कैसा था। तो दुर्योधन ने कहा तुमको बिना लड़ाई के राज्य चाहिए क्या, दे देता हूं। अर्जुन बोला नहीं नहीं उतना मैं गिरा हुआ नहीं हूं। देखिए अतिथि सत्कार बहुत महत्वपूर्ण है, अतिथि देवो भव, पर जो आने वाला को भी समझना चाहिए। वो जैसे मनु संहिता में बोला गया है कि ब्राह्मणों को सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों को सत्कार, अब ब्राह्मणों को हिला के रखा गया, ब्राह्मणों को बोला एक पैसा भी तू अगर दान में लेगा और अपने विषय भोग के लिए लगाएगा तो तू नरक में जाएगा, घोर नरक में जाएगा। और दूसरों को बोला गया अगर ब्राह्मणों को दान नहीं दोगे तो तुम लोग नरक में जाओ, तो लोग ब्राह्मण को दान दे रहे हैं और ब्राह्मण को बोला गया अगर तू दान लिया उसमें एक पैसा भी गलत उपयोग किया तो तू नरक में जाएगा, तो वो बेचारा डर डर के ले रहा, ये लोग डर डर के दे रहे नहीं देंगे तो हम लोग नरक में जाएंगे और वो डर डर के ले रहे, ये तो खतरनाक है, इसको अगर सही ठीक से उपयोग नहीं किया तो मैं भी नरक में जाऊं। पर डर किस चीज का है, अच्छी चीज के लिए डर होना चाहिए। बच्चों को बोलते हैं आग में हाथ मत लगाओ, तो आग से डरना चाहिए। तो इस तरह से काम क्रोध ऐसा आग है ये, तो जला के राख कर देगा उसके हम लोग मनमानी सुने तो वैदिक संस्कृति ऐसा है जो बताता था कि किस तरीके से अपनी काम वासना, अपने क्रोध, अपने लोग काम इसके वश में न आकर रजो और तमोगुण में, सत्वगुण में जिस प्रकार भगवान प्रसन्न हो उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और ये दाम्भिकता नहीं है, नहीं है। क्यों दाम्भिकता नहीं है, क्योंकि हमारी मन कुछ भी कहे भगवान को जो प्रसन्न करता है हम करेंगे। कैसा, जैसा उदाहरण के लिए हमें कभी कीर्तन में उत्साह नहीं रहता है, बहुत थके रहते हैं, क्या बहुत थका हुआ कल रात लेट हुई, पर भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग उत्साहपूर्वक कीर्तन करते हैं, ठीक है उनकी प्रसन्नता के लिए हम कीर्तन करेंगे। ऐसा लगता है कि वो दिखावा है पर एक्चुअली वो तपस्या है, और जब हम करते हैं वो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसी कृपा देते हैं कि वो उत्साह आ जाता है। तो इस तरीके से यस, दाम्भिकता और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश, नियमों को पालन करने की कोशिश के लिए जो जरूरी है वो करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उद्देश्य क्या है, एक शत्रु भी कभी कभी मित्रता के रूप, जैसे चोर लोग कैसे आते हैं ट्रेन में बातचीत करते वक्त, मित्र के रूप में आते हैं, हाँ आप इधर रखे, आप जाके आइए, मैं हूं ना इधर, इतना अच्छा बात करते हैं कि शत्रु को भी मित्र जैसा लगता है, अरे इतना अच्छा आदमी, उसके हाथ में सब सौंप के हम लोग जाते हैं पानी पीने के लिए, गाड़ी भी गया और ये भी गया, बस्ता भी गया, थैली भी गया। तो वो लोग दाम्भिकता, क्यों, उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि पहले पहले दिखाने का और बाद में जो उस तरफ मुड़े तो पीछे से छुरी मार देना। पर वो दाम्भिकता कि हमें कुछ लग नहीं रहा है पर हम कुछ और कर रहे हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, भले हमको अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे या नहीं, इंद्रियों को अच्छा लगे या नहीं, पर कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है और ये हमारी भलाई के लिए है। हमें कुछ सभ्यता, हमें एक सभ्य व्यक्ति बनना है और अंततः भगवान को प्रसन्न करना है, शास्त्रों को पालन करना है। इसलिए हम अगर नियंत्रण करेंगे हमारी मनमानी इच्छा को और भगवान को क्या अच्छा लगता है उसकी पथ पर चलेंगे, एक्चुअली हम प्रगति कर रहे हैं, वो दाम्भिकता नहीं है, भले बाहरी रूप से दाम्भिकता लगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या दिखावट है आपका, कीर्तन वर्तन कुछ है नहीं, भक्ति है नहीं, अंदर है नहीं, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं ताकि एक दिन आ जाए भगवान देखेंगे कि बेचारा कुछ है नहीं अंदर पर फिर भी कूद रहा है, चलो थोड़ा कृपा देंगे उसको, फ्री सैंपल देंगे तो शायद एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले उनको शारीरिक रूप से तुरंत, बेचारे कहां कहां से आए, पता नहीं चलते हुए आए, ट्रेन से आए, चलते हुए आए, तीर्थ, पहले तो चल चल के आते थे, अभी तो ट्रेन में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, तो थके हुए हैं, प्यासे हैं, तो कम से कम उनको थोड़ा पानी पिलाओ। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रणाम करो या आलिंगन करो या जो भी, मतलब व्यक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि वो स्वागत है। भले हृदय से स्वागत है ही या नहीं, पर उसे लगना चाहिए कि मेरा यहां आना, ये लोग खुश हैं। फिर शारीरिक रूप से थोड़ा उसका मतलब पानी वानी पिलाया, सब ठीक है, एक जगह बैठा। उसके बाद यहां बताया गया है, जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके, उसके बाद स्नान वान, जैसे आए पता नहीं किस जगह से आए, कहां से चलते आए, थके हुए हैं, पसीना छूटा, एक काम कीजिए आप स्नान वान कर लीजिए। ऑफकोर्स दूर से आए हुए अतिथि, दो मिनट के लिए आए अतिथि नहीं, वो दो मिनट के लिए आए, बोले नहीं अभी स्नान करना ही पड़ेगा, खाना खाना है, सोना ही पड़ेगा। अरे नहीं मुझे जाना है, बोले दूसरी बात है। और ये ऐसी अतिथि मतलब जो बहुत समय के बाद आए हैं, दूर से आए हैं, तो पहले उनको स्वागत करो, उनको लगे कि हमारा आना ये लोग को अच्छा लगा, प्रसन्न हुआ, आप आए, बहुत खुश हुई हमको। फिर स्नान वान कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, पर शरीर तुरंत फ्रेश हो गया पर थोड़ा भूख है, पता नहीं कब खाए, रात को खाए कि नहीं, तो शरीर पूर्ण रूप से मतलब बाहर से पहले हो गया, फिर अंदर से भी ठीक हो गया। उसके बाद पता नहीं ठीक से आराम था कि नहीं, ट्रेन में मच्छर काट रहा हो। ट्रेन में कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे चिल्लाते रहते रात भर, क्या कोई बड़बड़ करता रहता है, नींद नहीं आया, बहुत थके हुए, और साथ में अगर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिया तो आराम कीजिए, थोड़ा सो जाइए, तो फ्रेश फ्रेश हो गया शारीरिक रूप से, सोना हो गया, खाना हो गया, सब हो गया, और एक अच्छा आसन, आरामदायक, ये तो ऐसा ऐसा बैठे कि वो बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है, तो एक अच्छा आसन देके बैठ गए, कंफर्टेबल, एकदम खुश, मतलब फ्रेश हो गया, शरीर भी फ्रेश, मन भी फ्रेश हो गया बैठे। और उसके बाद क्योंकि आपने बड़े स्वाभाविक रूप से वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो अपना सबसे बेस्ट आपको देगा, क्योंकि आपने अपना बेस्ट उनको दिया, आदान प्रदान, सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपने उसका अपना प्रेम दिखाया, और वो अपना प्रेम दिखाएगा। और इस तरह से विदुर, महात्मा विदुर हम देखते हैं बड़े, खास करके वैष्णवों में, ये वैदिक संस्कृति की बात है, तो वैष्णव, वैष्णवों में और कितना होना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब गोपीनाथ मंदिर में हमारे एक स्वागत के अध्यक्ष हैं, एक प्रभु जी, एक ब्रह्मचारी इंचार्ज हैं, तो उनको बोल रहे थे, बोले जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहा है, संडे प्रोग्राम में नए लोग आते हैं, बोले ये कृष्ण के अतिथि हैं, प्रभुपाद जी के अतिथि हैं, तो उनको ऐसा स्वागत करना चाहिए, उनको लगे कि हमारा आना, ये लोग सब प्रसन्न है कि हम लोग आए, इसीलिए हम लोग बोल रहे तीन बार हरि बोल हरि बोल, अरे आप आए बहुत अच्छी बात है, करोड़ों जन्मों से साथ भ्रमण करते करते भटक गए थे आप, ऐसा नहीं बोलते ऑफकोर्स, आप भटक गए थे पर परमात्मा ने आपको आमंत्रण दिया है अंदर से, अरे आ जाओ मेरे घर आओ। भगवान ने किसी भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद जी के पुस्तकों के द्वारा, कोई इनविटेशन के द्वारा अंदर से उसको स्फुरित किया है, आमंत्रित किया है, आ जाओ मेरा घर है ये, तुम्हारा ही घर है ये, भगवत धाम है ये। प्रभुपाद जी की कृपा से किसी न किसी ने उसको बताया है और प्रभुपाद जी ने उसको आमंत्रित किया है, तो बोले कृष्ण के वो अतिथि हैं और प्रभुपाद जी के वो अतिथि हैं, तो कम से कम उनको ऐसा हमारे विचार द्वारा, हमारे आचार द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा, हमारे शरीर तरह से, किस तरह से उनको ऐसा एक वातावरण बनाओ और ऐसा लगने दो कि मेरे आने से ये लोग खुश हो गए। स्वभावत साधारणता आज के दुनिया में इतना बिजी रहते लोग, कोई आया तो कोई खुशी नहीं होता, पर क्यों आ गया ये, टाइम नहीं मेरे पास, कोई भी स्वागत लगता ही नहीं है क्योंकि सबको मालूम है मैं उधर जाऊंगा वो मेरे घर में ही नहीं आना चाहिए, स्वागत नहीं है। पर बोलते कि नहीं आप आए बहुत अच्छा हुआ, स्वागत कर रहे हैं, एक लड्डू खिला रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं उनको, आसन देके प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, खास उनके लिए प्रसाद लाके दे रहे लीजिए, आपको लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं, आप पहली बार आए पहले ही लाइन में खड़ा कर दिया बेचारा और वहां कुछ ठीक है। तो हमने एक नियम बनाया अपने मंदिर में, उधर बोले एक काम करो जो पहली बार आया उनको खड़ा करो, सबके सामने आमंत्रित मतलब स्वागत करो, स्वागत करने के बाद उनको बोलो कि प्रोग्राम के बाद इस व्यक्ति से मिले, माता इस व्यक्ति से मिले, प्रभु जी इस व्यक्ति से मिले, और उनको खास बैठ के बहुत अच्छा आप लोग आए बहुत अच्छी बात है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा कार्यकलाप चल रहा है यहां, आपका कुछ और प्रश्न है क्या इसके बारे में, कैसे आए आप, कैसे आपको पता चला इसके बारे में, ये प्रसाद लीजिए, और कम से कम पहली बार, दूसरी बार से बोलना लाइन में खड़े हो जाओ क्योंकि आपको मालूम है अभी, पहले आपको मालूम नहीं है, पहली बार आए हैं क्या करना है कहां लाइन में खड़ा होना है, कोई चिंता मत कीजिए, प्रसादम का प्लेट लाके दे देना उनको, आप खाइए। ये वो लोग क्यों लाइन में खड़े नहीं, वो ऐसा है हमारा सिस्टम, प्रोग्राम के बाद सब लोग लाइन में खड़े होके प्रसाद, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए हम बोलते पहली बार जो आए हैं उनको स्वागत कर रहे हैं, नहीं मालूम पर उनको ऐसा लगना चाहिए और एक बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, इसका मतलब हमने सही तरह से स्वागत किया, ये वैदिक संस्कृति है एक्चुअली। और अगर भगवान के अतिथि हैं, प्रभुपाद जी के अतिथि हैं, तो और कितना अच्छी तरह से हमको स्वागत करना चाहिए, और हम सेवक हैं, हम सेवक हैं, हमारे प्रभु के अतिथि हैं वो, तो इस भावना से अगर करें तो स्वाभाविक रूप से वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस हद तक, इसीलिए पुस्तकों का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें, वैदिक संस्कृति के सूक्ष्म चीजें, उसको भी समझाया गया है, कैसा अतिथि का सत्कार होना चाहिए, कैसा उसको लगना चाहिए, क्यों हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, और एक ऐसा वातावरण रहे तो उस वातावरण में जो रहेगा उसको बिना पुस्तक पढ़े समझ में आ जाएगा कि वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति होना है तो ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसा रहन सहन होना चाहिए, ऐसा खान पान होना चाहिए, ऐसा वेशभूषा होनी चाहिए, ताकि स्वाभाविक रूप से हम भगवान की भक्ति और बढ़े। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी। एक प्रश्न अगर है किसी का, शायद सब लोग अर्जेंट में हैं। हरे कृष्ण।